अल्लाह ताला ऐसे लोगों को रग़बत दिलाते हैं कि अगर अभी भी शौक़ नहीं बढ़ा, अगर अभी भी इन कुर्बानियों से अपने ऊपर रहम खा रहे हो, तो देखो मन का नयरजू लिका अल्लाह, जो अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता है रखते हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह के दीदार के लिए तरसती रही, जिनकी तमन्ना थी कि एक दफ़ा तो अल्लाह तुझे देखे, तू कितना खूबसूरत होगा, तूने कायनात को इतना प्यारा बना दिया, तू बता तू खुद कितना प्यारा होगा। जब उनको पता चलेगा कि आज अल्लाह से मुलाकात का दिन हो गया, तो वो खुश हो जाएं कि फ़इन्ना जलल्लाहि लआत, बस बेशक अल्लाह का फ़ैसला, अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त वो तो आने ही वाला है, थोड़े दिन की दूरी है, सिर्फ मौत तक इंतज़ार करो। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान वाली रूह बन जाओ, अल्लाह खुद पुकार के तुम्हें दिखाएगा अपना आप, क्योंकि वह हुवा समीउल अलीम, उसको खूब पता है कि तुमने उसके रास्ते में क्या क्या सुना था, क्योंकि वह समी है, और उसको पता है कि तुम्हारे क्या हालात हो गए थे, उसने एक एक चीज़ को जाना था, क्योंकि वह अलीम है। तुम तो अपनी किस्मत पे मान करो, इसलिए कि वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, और जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा, मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, किसकी, हक को सर बुलंद करने की, तो वो अपने ही फायदे के लिए करेगा, खुद ही कोश है। इन्नल्लाहा लगनीयुनिल आलमीन, बेशक अल्लाह तो सारे जहान वालों से गनी है, उसको कोई परवाह नहीं है कि तुम उसके काम करो, उसको कोई परवाह नहीं है कि तुम उसके इस्लाम की खिदमत करो, उसको कोई ज़रूरत नहीं कि तुम उसके कुरान की तबलीग करो, ये तो उसकी बात है, वो खुद कर लेगा, खुद खुद से करवा लेगा, दावतुल अर्ज़ से करवा लेगा। जिसने अबाबीलों से अपने घर की हिफाजत करवा ली, क्या वो आज के दौर में नहीं करवा सकता? बिल्कुल करवा सकता है, लेकिन वो तुम्हें एक चांस दे रहा है, तुम्हें कीमती बना रहा है कि तुम जो मुजाहदे करोगे। यहाँ देखिए लफ्ज़ जाहद है, और जाहद बाप मुफाला में आता है हमा जहती कोशिश, दूसरों के साथ मिल के कोशिश करना, ऐसी कोशिश जिसमें कश्मकश भी हो, ऐसी कोशिश जिसमें अपोजिशन का मुकाबला करना पड़े, यानी अगेंस्ट के मानों में। हर लम्हे तो जिहाद है, सबसे पहले तो नफ्स का बुत खड़ा हो जाता है, रगबतें मरगूबात, तो आगे शैतान खड़ा हो जाता है, फिर वो लालच दिखाता है, रगबतें दिखाता है, ये अच्छा वो अच्छा, ये बन जाओगे इतने पैसे, ये जॉब मिल जाएगी, उधर चले जाओ, ज़रा उससे निबट नुबट के इंसान घर वापस आता है तो मुआशरा खड़ा है सामने, फिर आगे अपने ही अपना हक लेने वाले बने हुए। इसीलिए अगली आयतों में आप देखेंगे माँ बाप की बात पहले ही आ जाएगी। सारी ज़िंदगी मुजाहिदा, सारी ज़िंदगी ईमान वाला सच्चा बंदा मुजाहिद है, इसलिए कहा कि इन रुकावटों से घबराओ नहीं। वल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अमल सवाले किए, कौन से अमल सवाले हैं? इधर मक्का में ये आयतें उतर रही हैं, वहाँ कौन से अमल सवाले थे? ना नमाज थी, ना रोज़ा था, ना हज था, ना ज़कात थी, ना पर्दा था, ना सूद था, ये कौन सा अमल सवाले है? ये इस्तकामत है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू, जम जाओ, बस अभी सीख लो, अभी अल्लाह की मर्ज़ी मालूम हो जाए, अमल करते रहना, सारी ज़िंदगी पड़ी है, अभी एक दफ़ा अल्लाह की बात को समझने के अपने आप को काबिल तो कर लो। क्या मिलेगा? लनुकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम, अन करीब हम उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देंगे, और अलबत्ता हम ज़रूर उनको बदला देंगे अच्छा उससे जो वो अमल करते थे, यानी उनकी सारी नमाज़ों में से सबसे अच्छी नमाज के वज़न पे सारी नमाज़ों को ले आएंगे, उनके रोज़ों में से सारे रोज़ों में सबसे अच्छा रोज़ा जो कभी ज़िंदगी में एक दफ़ा रखा ना, तो अहसनल्लसी कानू यामलून, हम सारे रोज़े उस लेवल पे कर देंगे। मैच कर दो फरिश्तों इनकी बात को, दुनिया में एक कानून है ना, मैच प्राइस मैच करते हैं, बस स्टोर्स ने अमेरिका में लिख के रखा होता है कि ये चीज़ हम इतने की बेच रहे हैं, ये केचप इतने की है, ये सब्ज़ी इतने की, ये ब्रेड इतने की है, आप पूरे शहर में किसी स्टोर से इससे कम की ले आए, हम प्राइस मैच कर देंगे। बाज दफ़ा लोग दो स्टोर्स अपने कंपेयर करते हुए दिखाते हैं, हमारे पास ये देखें ये $2.02 की मिल रही है ना, तो वो देखें हमारे दुश्मन जो सामने खड़े हैं दूसरे, उन्होंने इनको 2.3 की लगाई हुई है। इतनी इतनी बातों पे लोग तकाबुल करते हैं, प्राइस मैच करेंगे, और लोग ले आते हैं, बाज लोगों के पास होते हैं, वो कहीं से भी ख़रीदते हैं, ला के कहते हैं जी ये देखें, और वो वाकई रिफ़ंड करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दफ़ा तुम मेरी तरफ आ जाओ, टूटी फूटी कोशिशों को अच्छा कर दूंगा। हकीकत यह है कि बंदा मुजाहिदा करते करते थक जाता है, इज्तमाई ज़िंदगी की जिम्मेदारियां उसको तोड़ के रख देती हैं। बाज़ दफ़ा अपनी ज़ाती इबादत के लिए भी वक्त नहीं मिलता, बाज़ दफ़ा दिमाग ही नहीं खाली होता, अपनी सोच सोचनी होती, कहा बस एक दफ़ा कोशिश कर लो, हम तुम्हारे लिए आसानियाँ कर देंगे। हसन बसरी कहते हैं कि आदमी जिहाद करता है, ख्वाह उसने एक बार भी तलवार ना उठाई हो ज़िंदगी में। हमारे यहाँ जो जिहाद को किताल से कंफ्यूज करने का रुझान है ना, वो यहाँ भी आपको थोड़ा सा उस पर मदद मिलेगी समझने की कि जिहाद बिल्कुल फ़र्क चीज़ है। ये तो एक स्ट्रगल है, अटमोस्ट कोशिश। हर वक्त लोगों के चेहरे देख के आप निकल रहे हैं, हर वक्त ये चाह रहे हैं कि लोग आपसे नाराज़ ना हो, कोई बात ना हो जाए, गाड़ी कहीं लग ना जाए, घर वालों ने शामत ले आनी है, देर से चले गए शामत आ जानी है, खाना ना पका शामत आ जानी है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, बच्चे को चोट ना लग जाए शामत आ जानी है। ये है मंजाहदा, ये जिहाद होता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि दीन की तरफ आकर बंदा अपना नहीं रहता, इसी तरह अल्लाह का बनता है। जैसे हम कहते हैं ना कि शादी के बाद जो भी काम मर्द करते हैं तो वो अक्सर बीवियों के ऊपर बात लग जाती है कि इसने कहा होगा, इसने बताया होगा, इसने पट्टी पढ़ाई होगी। बहुत केयरफुल होती हैं बीवियाँ, नहीं आप ना कहिएगा, मेरे पे बात आएगी। ये तो दुनियादारी की बातें हैं ना, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह का बंदा बनने के बाद आप अपने रहते ही नहीं हैं। आप बस में सफ़र करें आप अपने नहीं हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं आप अपने नहीं हैं, लोग आपको तकलीफ़ दे दें आप अपने नहीं हैं, आप ट्रैफिक का कोई रूल तोड़ रहे हैं सोच लें कि आप अपने नहीं हैं, आप ऐसे साइन पे सड़क क्रॉस कर रहे हैं जहाँ के नहीं करनी, तो आप समझें कि आप अल्लाह को बातें करवाएंगे। अल्लाह ताला ने इन आयात में हमारी आंखें खोल के रख दी कि तुम चाहते हो कि मेरे नाम से पहचाने जाओ। आप देखिए कि दुनिया में लोगों को नस्बतें बड़ी प्यारी होती हैं ना, कोई बहुत ब्रांडेड जगह है जहाँ बहुत अच्छा इलाका है, इदारा है, लोग वहाँ रहने की बहुत कीमत होती है, पाबंदियाँ होती हैं, यहाँ घर बनाने की बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, गाड़ी इधर नहीं करेंगे, घास काटेंगे। जैसे मैंने अमेरिका में ये बात बहुत लोगों से सुनी है कि हमारा दिल चाहे ना चाहे घास काटने को लेकिन हमें कटवाना पड़ता है, क्यों कि कम्युनिटी की तरफ से नोटिस आ जाएगा कि आपने घास नहीं कटवाया। आपका ये दिल ना चाहे लेकिन करना पड़ता है, आपको अपने घर की हर चीज़ अपडेट रखनी पड़ती है क्योंकि इस इलाके की ये रिक्वायरमेंट है, लोग कीमत देते हैं ना। मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला हम सब से भी यहाँ पूछता है कि आर यू श्योर, वाकई तुम अल्लाह के साथ स्टिल अपना नाम रखवाना चाहते हो, और अगर नहीं तो वो यहीं से पलट जाए जिसे जहाँ हो प्यारी। ये कांटों का सफ़र है, जो कांटे फूल बन जाते हैं देखने वालों को वो कांटे लगते हैं, जो उस पर चल रहा होता है उसको फूल लगते हैं। देखने वाले कहते हैं कि बिलाल कोयलों पे लिटाया गया, और बिलाल को सुकून मिल रहा होता है उन कांटों पे लेट कर भी। उनके चेहरों से खुशी नहीं जाती, उनको मुस्कुराना भूल नहीं जाता, वो दुखी नहीं दिखते, वो रोते हुए नहीं दिखते। इसलिए मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करूँगी कि क्लास में बैठा करें तो ना परेशान दिखा करें, ना भवनक दिखा करें, ना लॉस्ट दिखें, खोए खोए रोए रोए मेरा दिल नहीं खुलता, मैं सच बता रही हूँ। अगर आप मुझे दुखी दिखेंगे ना तो मैं तो यही फिरा कर सकती हूँ कि आपका दुख दूर कर दूँ। यकीन करें कुरान पढ़ने वाले दुखी नहीं रहते, उनके चेहरे एतमाद वाले चमकते हुए चेहरे होते हैं, जुर्रत ढीले ढाले लुड़के पुड़के इधर से उधर, वो लोग कुरान नहीं पढ़ रहे होते, वो एक बेगार सहरे होते हैं, कैद होती है उनको। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बंदा इस रास्ते पे चलता है उसको पता चलता है कि मैं कितना कीमती हो गया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिल आपका अंदर आपको इस बात की अब गवाही ज़रूर देता होगा। असल मैं तो कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी की कदर आती कुरान के साथ जुड़ने के बाद है। कहला अभी ना मारना, अभी तो किया ही कुछ नहीं, मर गई मैंने क्या कर लेना, कुछ करा, अब तो पता चला था मैं इतनी कीमती हूँ, अब तो पता चला था मेरा दिल दिमाग किस लिए तूने मुझे दिया, ये टांगे ये कदम ये पाँव ये रास्ते, अब पता चले अल्लाह अब क्या मरना है, मैंने नहीं अभी मरना। एक तरफ दिल भी चाह रहा होता है अल्लाह से मिलने को कि मन का नजर जुलेका अल्लाह, और दूसरी तरफ दिल चाहता है कुछ करके आती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपको कहीं जाना है, चले अपने मुल्क में जाना है बहुत दिन से, जूं जूं दिन करीब आते हैं ना आपको खुशी भी हो रही होती है, लेकिन साथ धड़का होता है अभी तैयारी नहीं की, अच्छा फलां के लिए भी ले लूँ, अच्छा ये भी कर लूँ, अच्छा ये भी सिलवा लूँ, अच्छा ये कर लूँ, पूरी तैयारी से करूँगी। या जैसे आपके घर में कोई आने वाला हो मेहमान, शौक है, इंतहाई ज्यादा शौक है आपको, इंतजार है, दिल भी बेचैन है कब वो वक्त आएगा, लेकिन कह रहे नहीं थोड़ा और वक्त गुजरे, थोड़ी और तैयारी कर लूँ, जरा घर और साफ कर लूँ, खाने और पका लूँ। बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि मन का न यरजू लिक़ा अल्लाह, एक सच्चा मोमिन था और वक्त अपने दिल को अपने दिमाग को सजाता है, वो अपने अमाल को सवाले बनाता है कि अल्लाह जरा मैं और अच्छे अमल कर लूँ, क़यामत के दिन पता लग जाए कि मैं आपके लिए क्या लेके आई, मैं कौन से खूबसूरत अमल लेके आई, मैंने क्या किया, अल्लाह कितनी मुझे शर्म आएगी जब वहाँ पटारा खुलेगा और पता चलेगा ये टूटी फूटे अधूरी नेकियां करके लाया ये बंदा। अल्लाह कोई तो एक अच्छा काम करा ले, कोई एक अच्छा गिफ्ट तो ले आओ। अब देखिए कि आप जब किसी को गिफ्ट्स देते हैं ना, दो तरह से मैंने देखा है कि लोग गिफ्ट देते हैं, एक है कि एक ही अच्छा सा कीमती गिफ्ट खरीद लो, बड़ा तोहफा ले लो, अच्छा ले लो। बस लोग कहते हैं नहीं, ऐसा करते हैं कि छोटे छोटे गिफ्ट्स लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं, वो जैसे लोग हज पे जाते हैं ना, तो बस नानियाँ दादियाँ वो रियाल रियाल की दुकान पे घुसी रहती हैं, ये खिलौना ले लो, वो ले लो, कोई ऐसी खाने की चीज़ ले ली। अब वो छोटी छोटी कितनी भी ले लेना, तो फिर भी आखिर में क्या कहती हैं, कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं, अब इसके साथ कोई और बड़ी भी चीज़ होनी चाहिए। फिर वो छोटी के साथ बड़ी चीज़ें लेने जाती हैं, वो भी पैसे लगता है, फिर कहती है छोटी मैंने क्यों ली, बड़ी ले लेती। ऐसे ही है ना, मुझे ऐसे लगता है कि एक सच्चा मोमिन सारी ज़िंदगी चीज़ें जमा करता है, पहले छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी चीज़ें जमा होती जाती हैं ना, तो उसका फिर स्टैंडर्ड बढ़ता है, उसका मुरैल बुलंद होता है, उसकी चॉइस अच्छी लगती है। जैसे दुनिया में आप सोचेंगे किसी का स्टेटस बढ़ता है ना, मतलब आज अगर वो 5,000 कमा रहा था तो कल 10 कमाने लग गया, या उसका प्रमोशन हुआ है, तो शुरू में 5,000 जिस मर्द की कमाई है उसकी बीवी को हो सकता है 500 रुपये वाला जोड़ा बहुत कीमती लगता होगा। वो कहती हूँ कि अच्छा अगर कभी मौका हुआ चलो ईद पे इस बार 500 रुपये का जोड़ा लूँगी, क्योंकि आमतौर पर वो 100-200 वाला लेने की आदी है। लेकिन आप देखिए कि जब वो मियाँ की पे 5,000 से 50,000 पे पहुँच जाती है, क्या आप औरतों को उन्हीं दुकानों पे शॉपिंग करते देखते हैं? फिर तो शायद वो 500 का जोड़ा जो कल तक उसके लिए कीमती था वो अपनी मुलाजमा के लिए लेगी ना, ऐसे ही होता है ना। अब यहाँ से क्या हुआ कि वो कहते हैं ना अल्लाह हुसन देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, नखरा तो आ ही जाता है ना। जब दुनिया में किसी के पैसे बढ़ते हैं ना तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। अब इसी मिसाल को ज़्यादा दूर जाए बगैर पलट के आए तकवा पे ले। बंदा है मोमिन का तकवा जब छोटा होता है ना तो छोटी छोटी नेकियां करके कहता है किया तो है ना, फलां से तो अच्छा हो ना, उसको छोटी छोटी नेकियां कहता है, लो नमाज तो पढ़ी है ना, अब चुप करके बैठो, चलो कोई नहीं गले में तो लिए ना, उसको वो छोटी नेकी भी बहुत भारी चीज़ लग रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता तकवा बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता बंदे का जिस तरह कहने जी कि लाइफ स्टाइल चेंज होता है, उसको लगता है अभी बहुत पड़ी हुई है नेकियाँ, फिर वो कहता है ये नेकी ये तो बहुत छोटी है, नहीं अब तो और बड़ी करूँ। फिर होते होते वो चीज़ें जिसको कल वो बहुत बड़ी समझता था ना, आज उसको छोटी लगती है, ये नेकियाँ लेके जाऊँगी अल्लाह के पास, ये दिखाऊंगी, लो ये तो सब करते हैं, मुझे तो कुछ और करना है, मुझे तो कुछ और करना है। क्योंकि जब बहुत सारे लोग किसी एक शख्स को तोहफे दे रहे होते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा तोहफा सबसे अच्छा हो या नुमाया हो। इसी तरह जन्नत के बारे में सोचने वाला भी ये सोच रहा होता है कि अच्छा अगर मैंने जाना है क़यामत के दिन तो ये नेकी खुलेगी, ये तो सारे कर रहे हैं। अबू बकर ने जब पूरे घर का सामान पेश किया तो उन्होंने भी तो एक लम्हे के लिए सोचा ही होगा ना कि अल्लाह ताला मैं वो दूं जो कल पता चले कि जो अबू बकर लेके आए हैं वो और कोई नहीं लाया। उमर ने कहा मैं आज अबू बकर से अच्छा तोहफा लेके जाऊंगा, पता चला अबू बकर पूरे घर का ले आए या आधे घर का लेके गए थे। ये रेस है वफीजा लिकफल यतना फसल मुतनाफिसून, और इस तरह बंदा है मोमिन एक आखिरी चीज़ अल्लाह के हवाले करता है, और वो है इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। क़यामत के दिन जाके कह देगा अल्लाह तेरे लायक कोई चीज़ ही नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला मुझे कि मैं आज तेरे सामने लाता, ये अपना दिल बचा के ले आया हूँ, टूटने से बचाया, ख्वाहिशों से बचाया, रग़बतों से बचाया, अंदेशों से बचाया, और ये बस सारी ज़िंदगी इसको फ्रेजल चीज़ की तरह, नाजुक चीज़ की तरह कीमती समझ के संभालता ही रहा, साफ़ करता रहा, इसको हर एक को नहीं पकड़ा देता था अपना दिल, हर एक का गम नहीं डाल लेता था दिल में, सबके दुखड़े नहीं सुनने बैठ जाता था, और सबकी बातों पे रगबत में नहीं आता था, बंदा मोमिन अपने दिल को एटम बॉम्ब से भी ज्यादा केयरफुली रखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे रब की याद की जगह है। देखिए, चीज़ तो छोड़ दें, चीज़ की स्लिप भी जहाँ होती है वो भी कीमती होती है। मसलन आप डायमंड का सेट लेते हैं, कहाँ रखते हैं? जो लेते हैं वो भी बेचारे लॉकरों में रख के फिर आर्टिफिशियली पहनते हैं, इतना कीमती है। आप उस डायमंड के सेट की पर्ची कहाँ रखते हैं, जो इस नियत से ली हुई है कि अगर कुछ 19-20 हुई या बेचना पड़ा तो दिखा देंगे? वो स्लिप्स फिर किसी लॉकर या ताले में रखे होंगे आपने। डायमंड दूर की बात है, स्लिप भी कीमती होती है। इस तरह एक सच्चा मोमिन अपने दिल को तो बचा के रखता ही है, क्योंकि वो बहुत कीमती है, उसमें अल्लाह की याद है। लेकिन इसके साथ साथ वो फिर उस दिल पे असरअंदाज होने वाली हर चीज़, हर जज्बे, हर सोच को भी बहुत एहतियात से रखता है। कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि जिससे मेरे दिल की चमक ख़त्म हो जाए। नेगेटिव जज्बे, हसद, रकाबत, तंज, वो ज़ुबान को भी बहुत संभाल के रखता है। कोई ऐसा लफ्ज़ ना मैं बोल दूँ कि कल अल्लाह के पास जाऊँ तो शर्म आए। सबके बीच में बंदे के मुँह से कभी बुरी बात निकल जाए तो बाद में सर शर्म से झुकता है, हाय ना ही बोलता, सारे चुप थे मैं बोल पड़ी, क्या ज़रूरत ही बोलने की, ये क्या कह रही थी, वो क्या कह रही थी। सारी ज़िंदगी बंदा खुद को संभालता है, संभालता है, संभालता है, और फिर मौत का इंतज़ार कर रहा होता है कि अल्लाह बस ले ले अब मुझे, इससे पहले कि ये गंदा हो जाए। कभी आप घर साफ़ कर ले तो आप कहते हैं वाह जय मेहमान, इससे पहले कि बच्चे फिर गंदा कर दें। खाना पक जाए ना तो दिल चाहता है बस अब खिला दे, इससे पहले कि इसकी लुक ख़त्म हो जाए, ये सब्जियों का रंग बदल जाए। मोमिन की ये कैफियत है मन का नजर जो लिखा अल्लाह, जब उससे कोई बहुत बड़ी नेकी होती ना वो कहता है अल्लाह बस इसी पे जान ले लेना, खात्मे बिल खैर करना, सुए इंजाम से बचाना, आज नेकी कर रही हूँ आज ही मार दे, ऐसा ना हो कि गलत काम करूँ किसी वक्त। सारी ज़िंदगी का ये मुजाहदा, ये तो अभी अपनी ज़ात के मुजाहदे थे ना, तिलावत सुनते हैं आगे फिर अब इंसानों के साथ कैसे होंगे। और आप देखेंगे इस पूरी सूरत में कशमकश है, पूरी सूरत में नबियों के किस्से, हक और बातिल की कशमकश। आप सूरतों का मिजाज समझा करें, वो वाक्य 10 दफ़ा गुजरे आज यहाँ क्यों आया है, ये मिसाल पहले कई बार आई। आप कहते हैं जी मन जाहदा, ये जिहाद की बातें तो सूरत तौहा में भी हुई थी, नफ्स का जिहाद चलो सूरत बनी इसराइल में हुई थी, हर जगह फ़र्क है। ये अपोजिशन के मुकाबले में अपने आप को जमाना है। तिलावत सुनते हैं, दिल में नियतें करेंगे कि अल्लाह हक और बातिल की कशमकश में इस्तकामत पे रखना, गिव अप ना करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अलिफ लाम मीम। अहसिबन नास अन यतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वलकद फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين
من جاهد فإنما يجاهد لنفسه کہ جو کوئی کوشش کرتا ہے حق کو بلند کرنے کی اسلام کو سامنے لانے کی اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پہ رکھنے کی تو اس کا کسی دوسرے کے سر پر کوئی احسان نہیں کیونکہ یجاہد لنفسی اپنے ہی نفس پر وہ جہاد کرتا ہے اپنے ہی لیے وہ کام کرتا ہے یہ بالکل ایسی ہے کہ اگر کوئی دن رات کام کرے اور جو مال ملے اس کو پھر خوب اڑائے اور کسی دوسرے کو اس کا حق بھی نہ دے تو جب وہ کسی کے سامنے کہے گا کہ میں نے اتنا کمایا ادھر گئے رات کو سویا نہیں کہ وہ منہ پہ کہہ سکے گا تو کہہ دے گا اور نہیں ہے تو دل میں تو وہ سوچے گا تو مجھے کیا تم رات چھوڑو دن چھوڑو تم 24 گھنٹے کام کرو جب تم نے مجھے اس میں سے کچھ نہیں دیا یا تم میرے حق نہیں ادا کرتے تو پھر مجھے اس کی کیا خوشی ہوگی بالکل یہی انداز اس آیت کا حصہ بتا رہا ہے کہ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ کچھ کر رہے ہو کچھ محنت کر رہے ہو اللہ کے راستے میں اگر اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری تمہیں کچھ کام کروانے پہ مائل کرتی ہے تو شکر کرو، لیکن اس کا فائدہ تمہیں کل ہوگا۔ یعنی آنکھیں کھول دیں کہ اگر کوئی بندہ بھی اللہ کی بات مانتا ہے یا اللہ کے دین پر چلتا ہے تو اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی اطاعت اس کی فرما برداری کے لیے تو اور بہت ساری مخلوقات ہیں جو اس کے ان کاموں کو کرتی ہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ آپ جہان والوں سے بے نیاز ہے، اس کو بالکل بھی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کریں۔ وہ کسی کی چھوٹی سی چیز کو بڑا بنا دے، کسی کے بڑے کام کو اس کے کسی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ریجیکٹ کر دے، وہ بے نیاز ہے۔ اس لیے اس میں عمل کی بات کیا مل رہی ہے، ایک اور، کہ انسان کوئی بھی کام کرے نیکی کا تو ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کی کثرت سے متاثر نہیں ہوتا۔ غنی وہی ہوتا ہے جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، بہت بڑی کام کرے کوئی اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا کام صحیح نہ کرے تو اللہ انصاف کے تقاضوں کے تحت اس کو پکڑ لے گا۔ اب وہ کہے نہیں میں نے تو یہ بھی کیا وہ بھی کیا، تو کہا کہ وہ پھر تمہاری اپنی مرضی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات پہ جو ہم نے بات کی، کہ اس دور میں نہ تو نماز روزہ تھا، نہ کوئی حرام کی چیزیں تھیں، نہ حلال کی کوئی تشریحات تھیں، نہ کوئی عبادات کا اس طرح کا ڈیسائیڈڈ میٹر تھا۔ تو یہاں پھر عمل الصالحات سے مراد ان کا دین پر جمنا اور ان کا اسلام کے راستے میں جو مشکلات پیش آ رہی تھیں اس کا برداشت کرنا آ گیا۔ اس کو بھی اگر آج کے دور میں دیکھیں تو بعض دفعہ مسلمان بہت شور مچاتے ہوئے دکھتے ہیں کہ حالات بڑے تنگ ہیں، حالات بڑے مشکل ہیں اور اسلام پہ یہ مشکلات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر صبر کرو۔ اگر آج تم سمجھتے ہو کہ مسلمان اپنی تاریخ کے اس دور سے گزر رہے ہیں جو اپنے اصل کے اعتبار سے مکی دور سے ہے، تو تھوڑا صبر کر لو۔ یہ ہر وقت جو رونا رونا ہوتا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، مسلمانوں میں یہ ہو گیا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ جس کو ایک دفعہ جنت کی ہلکی سی جھلک بھی دنیا میں دکھ جائے گی، اس کو جنت کی قیمت کبھی بھی بڑی نہیں لگے گی۔ بس آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو کسی کوٹری میں رہتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ میں نے 4 ملین کا گھر لیا ہے، وہ فوراً اس کو اپنے روپوں میں ڈالے گا، اچھا اتنے پیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ آپ کہتے تم نے کبھی دیکھی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے کیا لیا ہے۔ ہر بندہ اپنی جگہ کو اپنے حساب کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کی ویلیو کو بھی پہچان رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جب انسان کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں تو اس وقت اس کے عمل صالح جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے اس چیز کا تو ذریعہ بنتے ہی ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو، لیکن لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی خطاؤں کو، ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ ان کے دل سے برائیوں کی جو محبت ہے وہ کم ہو جائے گی، اس کی رغبت ختم ہو جائے گی، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو اس کا اچھا بدلہ دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہ آیت پیچھے بھی کئی مختلف انداز سے گزری ہے، لیکن بار بار اس پہ بات کرنے کو دل چاہتا ہے کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ میں ہوں تیرا، چاہے عمل پورے نہیں ہو پاتے اس طریقے سے، کوشش کرتا ہوں لیکن وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے میری عبادات کا، میرے معاملات میرے کاموں میں کچھ کمیاں رہتی ہیں، لیکن میں ہوں تیرا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی بھر میں کوئی ایک کام ایسا کروانا کہ جس کو مثال ہے کہ اس نے اس نماز کو بہت ہی اچھی طرح پڑھا ہوا ہو، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ساری نمازوں کو لائیں گے۔ بالفرض آپ دیکھیے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں 10,000 نمازیں پڑھتا ہے، فرض نمازیں، اب ان 10,000 نمازوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں نا۔ کبھی آپ کا دل چاہتا ہے کہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں، کبھی آپ کا دل چاہتا ہے تو تشہد میں آپ ساری ہی دعائیں مانگ لیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے شرم بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ یہ تیرے لیے پڑھی ہے۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ساری نمازوں کو جمع کرے گا، لے کے آؤ۔ دنیا میں عموماً ایسے موقعوں پہ کیا کیا جاتا ہے؟ شاید آپ میں سے کوئی تھوڑا سا میتھمیٹکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو تو وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ لوگ اس کا ریشو نکال لیتے ہیں، یعنی ساری کو جمع کرو پھر اس کے اندر سے ایک پرسنٹیج نکال لیتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں جی اتنے پرسنٹ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ وہ ساری ٹوٹی پھوٹی عبادات میں کوئی کمزور، کوئی مریل بیمار سی باتوں میں 4-5 نمازیں بڑی چمک رہی ہیں، یوں نئی دلہن کی طرح سنوری چمکی ہوئی، وہ بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 4-5 نمازوں کو بلائیں گے اور ان کے وزن پہ باقی ساری نمازوں کو بھی ویسے ہی کر دیں گے۔ یہ ہے احسن الذی کانوا یعملون، اتنی بڑی ڈھارس ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعی جب اللہ کا بننا چاہتا ہے تو اس کو دن بدن یہ چیز بہت احساس دیتی ہے کہ اب دوسروں کو تو تم فائدہ دے رہے ہو، तुम्हारा अपना क्या हाल है? तुम्हारे पास इतना मौका ही नहीं कि तुम अपनी इनफरादी इबादात भी कर सको। हर वक्त फिक्र एक है, तुम्हारी तहज्जुद के वक्त भी वही फिक्र है, तुम्हारी रात की वही फिक्रें, तुम्हारी सुबह फजर के बाद की वो फिक्रें कि लोगों को कुछ फ़ायदा देना है, सबक याद करना है, मैंने अभी तर्जमे का टेस्ट देना है। ऐसे वक्तों में अगर तुम बहुत नहीं कर सकोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे थोड़े किए पे राज़ी हो जाएगा। हदीस में आता है कि आम हालात में इंसान सेहतमंदी में जो इबादत करता है, बीमारी के दिनों में इबादत या उसकी नफिल जो चीज़ें छूट जाती हैं, अल्लाह सुबहान तआला उसको उसमें उन्हीं के करने का अजर दे देता है। मसलन कुछ लोगों को बहुत गिल्ट रहता है कि हमने सारी ज़िंदगी रोज़ा नहीं छोड़ा था, अब छूट जा रहे हैं, बीमार हो गए हैं, तो फिक्र ना करिए। अहसन अल्लज़ी कानू यअमलून, जो करते थे अल्लाह आज उसका अहसन दे देगा। सारी ज़िंदगी अगर नेकियाँ की, कोशिशें की, अल्लाह की ज़ात उसको अच्छा कर देगी।